पिंकेश कुमार की आवाज़ में बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के सिद्धांत चैप्टर मताधिकार और प्रतिनिधित्व की पद्धतियाँ। लोकतंत्र मानवीय समानता को स्वयं सिद्ध मान लेता है और राजनीतिक समानता तभी आ सकती है जबकि नागरिकों को मताधिकार दिया जाए। सरकार के कानून और नीतियों से सब संबंधित होते हैं और जिस बात का प्रभाव सब पर पड़ता हो उसका निर्णय सबके द्वारा ही होना चाहिए। जॉन स्टुअर्ट मिल का कथन। प्रतिनिधि प्रणाली की आवश्यकता। आधुनिक काल में विश्व के अधिकांश राज्यों द्वारा प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। ये शासन व्यवस्था दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है। यह शासन का रूप सबसे अधिक श्रेष्ठ कहा जा सकता है, लेकिन वर्तमान समय में क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से विशाल राज्यों में शासन का यह स्वरूप व्यवहारिक नहीं रहा है। अतः वर्तमान समय में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र ही प्रजातांत्रिक व्यवस्था का एकमात्र व्यवहारिक रूप है। इस व्यवस्था में जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और ये प्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं। प्रतिनिधियों के चुनने के इस अधिकार को ही सामान्यतः निर्वाचन का अधिकार कहते हैं। निर्वाचन का अधिकार प्रजातंत्र का आधार है, क्योंकि यदि जनता अपने इस अधिकार का सही रूप में प्रयोग करती है तो श्रेष्ठ सरकार का निर्माण होता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो संपूर्ण व्यवस्था ही दूषित हो जाती है। वयस्क या सार्वभौम मताधिकार। मताधिकार की प्रकृति के संबंध में दो सिद्धांत माने गए हैं, पहला सीमित मताधिकार और वयस्क मताधिकार। परंपरागत विचार है कि मताधिकार वास्तव में एक विशेषाधिकार और पवित्र कर्तव्य है जो सामाजिक आवश्यकता तथा उपयोगिता की दृष्टि से नागरिकों को प्रदान किया जाता है। बलनशली मीन तथा मेन का विचार है कि संपूर्ण समाज के कल्याण को ध्यान में रखते हुए मताधिकार केवल कुछ ही व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो कि इसकी क्षमता तथा योग्यता रखते हों। अतः इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा, संपत्ति या लिंग के आधार पर मताधिकार को सीमित किया जाता है। परंतु इस विचारों से भिन्न कुछ विचारक प्रत्येक नागरिक को मताधिकार प्राकृतिक अधिकार मानते हैं और शिक्षा, संपत्ति, लिंग या अन्य किसी भेदभाव के सार्वभौमिक मताधिकार की व्यवस्था करने को कहते हैं। वयस्क मताधिकार का आशय है पागल, दिवालिये और इसी प्रकार की अन्य अयोग्यताओं वाले व्यक्तियों को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त होना चाहिए। वयस्क मानने की आयु भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग हो सकती है। भारत में 21 वर्ष के व्यक्ति को वयस्क समझा जाता था, किंतु अब 18 वर्ष की सीमा तय कर दी गई है। रूस, अमेरिका तथा अन्य राज्यों में भी 18 वर्ष के व्यक्तियों को वयस्क समझा जाता है। वयस्क मताधिकार के पक्ष में तर्क निम्नलिखित हैं। पहला, राज्य के कानूनों और कार्यों का प्रभाव समाज के केवल कुछ ही व्यक्ति पर नहीं वरन सभी व्यक्तियों पर पड़ता है, अतः सभी व्यक्तियों का शासन की नीति निश्चय करने का अधिकार होना चाहिए। स्टुअर्ट मिल के शब्दों में, लोकतंत्र मनुष्यों की स्वयं समानता को स्वयं सिद्ध मान लेता है और राजनीतिक समानता तभी आ सकती है जबकि नागरिकों को मताधिकार दिया जाए। सरकार के कानून और नीतियों से संबंधित होते हैं और जिस बात का प्रभाव सब पर पड़ता है उसका निर्णय सबके द्वारा होना चाहिए। दूसरा, लोकतंत्र की वास्तविक अभिव्यक्ति। आधुनिक प्रजातंत्रवादियों का कथन है कि सत्ता अंतिम रूप से जनता में निहित होती है। अतः डॉक्टर गार्नर के शब्दों में, ऐसी सत्ता की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सार्वजनिक मताधिकार में ही हो सकती है। तीसरा, सार्वजनिक शिक्षा का साधन। वयस्क मताधिकार राजनीतिक जागृति और सार्वजनिक शिक्षा का साधन है। इसके अभाव में व्यक्ति उदासीन हो जाता है और राज्य के शासन में हाथ बटाने से कतराता है। यदि मतदाता राजनीतिक उदासीनता का स्वयं ही त्याग न करे तो राजनीतिक दल निरंतर उसके पास जाकर इसका त्याग करते हैं। चौथा, आत्मसम्मान में वृद्धि। इस मताधिकार का जनता पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है और उसे महसूस होता है कि शासन की वास्तविक शक्ति उसी के पास है। जैसा कि ब्राइस कहते हैं, इससे उनके नैतिक चरित्र का उत्थान होता है। पांचवा, अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित। अल्पसंख्यक अपने प्रतिनिधियों को चुनके अपने हितों की रक्षा करते हैं और हितों की रक्षा में वो विधिकर्ताओं की सहायता ले सकते हैं। छठा, प्राकृतिक अधिकार। मोंटेस्क्यू ने इस बात पर बल दिया है कि सब निवासियों को प्रतिनिधियों के चुनाव में मत देने का अधिकार है, केवल उनको छोड़कर जो किसी कारणवश अपना भला बुरा सोचने में असमर्थ हैं। सातवां, राजनीतिक एकीकरण का साधन। आठवां, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि में वृद्धि, देशभक्ति की भावना में वृद्धि। और 10वां, सीमित मताधिकार को अपनाने में कठिनाइयाँ। सैद्धांतिक दृष्टि से यह बात उचित हो सकती है कि केवल शिक्षित व्यक्तियों को ही मताधिकार प्रदान किया जाए, परंतु इसे व्यवहारिक रूप में अपनाना कई कठिनाइयों को जन्म देना है। यदि शिक्षा को मताधिकार का आधार बना दिया जाए, तो सरकारी अधिकारियों को यह जांचने का अधिकार देना होगा कि संबंधित व्यक्ति लिख या पढ़ सकता है अथवा नहीं, और अधिकारियों द्वारा इस बात का दुरुपयोग किया जा सकता है। अमेरिकी संघ के कुछ राज्यों में इस आधार पर निग्रो जनता को मताधिकार से वंचित रखा गया, जो कि लोकतंत्र के लिए उचित नहीं कहा जा सकता है। अभ्यास मताधिकार के विपक्ष में तर्क। सन हेनरी मेन सिजविक तथा लेस की जैसे प्रमुख विचारक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत का खंडन करते हैं और इसके आलोचक निम्न तर्क देते हैं। पहला, यह विचारहीन और भयानक है। 19वीं सदी में प्रसिद्ध इतिहासकार मैकाले ने कहा, इससे एक बड़ी भारी लूटमार का भय है, और इंग्लैंड में यह सिद्धांत क्रियान्वित किया गया तो थोड़े अर्धनग्न मछुए यूरोप के नगरों की लूट को उल्लुओं और लोमड़ियों के साथ बांट लेंगे। इसी प्रकार लेवेलिया ने कहा है, वयस्क मताधिकार के परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता, व्यवस्था और सभ्यता सभी कुछ का अंत हो जाएगा। अज्ञानी व्यक्तियों को मताधिकार दो और वे आज अराजकता का तथा कल अतताई शासन का शिकार हो जाएंगे। दूसरा, शासनाधिकार अशिक्षितों के हाथ में। प्रत्येक व्यक्ति अपना ही ठीक ठीक समझता नहीं है, और अधिकांश व्यक्ति अपने भावों और मनोवेगों का दास होता है, जिससे वह राजनीतिक के गंभीर प्रश्नों को छोड़कर आकर्षक शब्दजाल और राजनीतिक दलों के नारों और प्रचार में फंस जाता है। अतः यदि शिक्षा और संपत्ति संबंधी योग्यताओं को हटाकर सभी व्यक्तियों को मताधिकार दिया गया, तो व्यवस्थापिका के अधिकांश सदस्य अयोग्य एवं संकुचित दृष्टिकोण के होंगे। मिल कहता है, मैं इस बात को नितांत अनुचित मानता हूँ कि कोई व्यक्ति लिखने पढ़ने की योग्यता प्रदान करने के पूर्व ही मताधिकार में भाग ले। मताधिकार को सार्वभौम बनाने के पूर्व सभी को शिक्षा प्रदान करना नितांत आवश्यक है। तीसरा, शासन संबंधी प्रश्नों की जटिलता। आज शासन में इतनी जटिलता व्याप्त हो गई है कि सामान्य व्यक्तियों के पास इतना समय नहीं होता है कि इस पर विचार करके अपना निर्णय दें। स्थिति में वे अपने मताधिकार का उचित प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लैकी ने ठीक कहा है, कम सफल अथवा अन्य किसी दैवी प्रकोप के कारण जिसके सामने सरकार असमर्थ हो, जिन पर उतना ही प्रभाव हो जितना नक्षत्रों की गति पर जनता में असंतोष फैल जाने के कारण, और निश्चित मतदान का झुकाव इस प्रकार हो सकता है कि समतुल्य निर्वाचन से पलड़ा पलट जाए। चौथा, केवल मताधिकार से अधिकार सुरक्षित नहीं होता है। वस्तुतः नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा वयस्क मताधिकार की अपेक्षा निष्पक्ष न्यायालय, स्वतंत्र प्रेस और सबल विरोधी दल पर अधिक निर्भर करती है। पांचवा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। वयस्क मताधिकार में दूसरे धनी व्यक्ति धन का लोभ दिखाकर गरीब व्यक्तियों के मत खरीद लेते हैं, जिससे कि घूस और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। छठा, अनुदारवादिता को प्रोत्साहन। सामान्यतः जनता रूढ़िवादी होती है और उसके द्वारा आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में प्रगतिशील कदमों का विरोध किया जाता है, जिससे समाज सही प्रगति नहीं कर पाता है। मताधिकार एक परम कर्तव्य होता है। मताधिकार वास्तव में अधिकार नहीं वरन कर्तव्य है, जिसका प्रयोग सावधानी, बुद्धिमता और विवेक के साथ किया जाना चाहिए। अतः मताधिकार उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए जो जनता के कल्याण और राज्य की भलाई में उचित प्रयोग करने की योग्यता रखते हो। निष्कर्ष, वयस्क मताधिकार के विपक्ष में दिए गए कुछ तर्क तो नितांत भ्रमपूर्ण हैं, और शेष तर्कों को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। शिक्षा के आधार पर मताधिकार को सीमित करना उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अशिक्षित श्रमिक अपने मताधिकार का प्रयोग अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति से भी उचित रीति से कर सकता है, तथा संपत्ति के आधार पर तो आज के इस लोकतांत्रिक समाज में मताधिकार का बंटवारा करना संभव ही नहीं। गार्नर ने कहा है, क्या यह उचित है कि वह व्यक्ति जो दुर्भाग्य या परिस्थितियों का शिकार होकर अपना धन खो बैठा हो और सब योग्यताओं के होते हुए भी मताधिकार से वंचित किया जाए? कदापि नहीं। अतः हम समाज को प्रगतिशील बनाना चाहते हैं तो सभी व्यक्तियों को मताधिकार देना होगा। वयस्क मताधिकार का प्रयोग इस बात का साक्षी है कि यदि प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य है। लॉस्की ने कहा है, वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं है। स्त्री मताधिकार। स्त्रियों के लिए मताधिकार प्राप्त करने का आंदोलन प्रजातंत्र के विचार के साथ ही आरंभ हुआ। 19वीं सदी में इंग्लैंड में बेंथम हेयर मिल ने स्त्रियों के मताधिकार के आंदोलन को प्रबल समर्थन किया, और फ्रांस में लेवेलिया ने इसे आगे बढ़ाया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्यों ने इस दिशा में पहला कदम उठाया। इस दिशा में महायुद्ध स्त्रियों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से एक दैवी वरदान सिद्ध हुआ और 1918 में इंग्लैंड में एक कानून के द्वारा 30 वर्ष के ऊपर की महिलाओं को मताधिकार दिया गया। 10 वर्ष पश्चात यह अवस्था घटाकर पुरुषों के बराबर 21 कर दी गई। सन 1919 में अमेरिका में स्त्रियों को पुरुषों के समान मताधिकार दिया गया और विश्व के भिन्न देशों में ऐसा करने की प्रथा चल गई पड़ी। भारत में संविधान द्वारा स्त्रियों को पुरुष के समान ही मताधिकार दिया गया और फरवरी 1971 में स्विट्जरलैंड में भी स्त्रियों को मताधिकार दिया गया। आज कुछ अपवादों को छोड़कर सारे देश जहां पे प्रजातंत्र प्रचलित है स्त्री को भी समान मताधिकार दिया गया है। स्त्री मताधिकार के विपक्ष में तर्क। पहला, अप्राकृतिक। यदि स्त्रियां राजनीति में भाग लेगी तो उन्हें इनकी कठोरता और अशिष्टताओं को सहना होगा जिससे उनके स्त्रियोचित गुण का नाश हो जाएगा और मानवीय संस्कृति को हानि पहुंचेगी। स्त्री को राजनीति के चक्कर में पड़कर अपने महत्वपूर्ण कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर सकेगी जिसके लिए प्रकृति ने उसे उत्पन्न किया है। गार्डनर ने कहा है, यदि वे अपने आप को राजनीतिक समस्याओं में उलझा लेगी तो घर से उदासीन हो जाएगी और जिस प्रकार वे घर के रक्षक है और बच्चों का पालन पोषण उनका मुख्य कर्तव्य है उसकी उपेक्षा हो जाएगी। दूसरा, स्त्रियोचित गुणों का अंत। स्त्रियों का स्वाभाविक गुण है लज्जा, कोमलता, सहनशीलता, नम्रता, दया, संवेदना, लेकिन राजनीति में भाग लेने के कारण ये सारे गुण बरकरार नहीं रखे जा सकते। इस प्रकार अरस्तू ने कहा था, राजनीतिक दलदल में फंसने के लिए पुरुष बनाए गए हैं, स्त्रियां नहीं। तीसरा, घरेलू शांति के लिए विनाशकारी। स्त्रियां घर की देवी है और अगर घर से बाहर अपने कार्यों का विस्तार करती है तो घर की शांति भंग हो जाएगी। मताधिकार में दंपत्ति के बीच राजनीतिक मतभेद के परिणाम स्वरूप पारिवारिक जीवन नष्ट होने की आशंका हो जाएगी। चौथा, नागरिक कर्तव्यों का पालन करने में स्त्रियां अयोग्य होती हैं क्योंकि स्त्रियां शारीरिक दृष्टि से कोमलांगी होती हैं और ये उनकी दुर्बलताएं उनकी अज्ञताएं होती हैं। उदाहरणार्थ स्त्रियां सेना अथवा पुलिस में भर्ती होकर देश की रक्षा के कार्य में भाग नहीं ले सकती, अतः उन्हें पुरुषों के समान राजनीतिक मताधिकार प्रदान करने का क्या औचित्य है। पांचवा, दोहरा मतदान। आलोचक के अनुसार यदि स्त्री शारीरिक और मानसिक दृष्टि से निर्बल होती है और विवाहित अवस्था में अपने पिता और विवाहित अवस्था में अपने पति के विचारों से प्रभावित होती है, अतः उसके मत का अपना कोई निजी महत्व तो नहीं रह जाएगा और वे पति या पिता के दबाव में आकर मतदान करेंगे। रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन। स्त्रियां परंपरावादी और रूढ़िवादी प्रकृति से ही होती है, अतः ये प्रगतिशील समाज के निर्माण में बाधक सिद्ध होंगी। स्त्रियां मताधिकार के प्रति उदासीन होती हैं और जिन देशों में मताधिकार स्त्रियों को मिला हुआ है वो प्रयोग कम ही करती हैं क्योंकि मतदान केंद्रों तक जाने के लिए वो अपने किसी दौड़ का मुंह ताकती है और इस प्रकार उसके लिए कोई औचित्य नहीं होता। अब स्त्री मताधिकार के पक्ष में तर्क। स्त्री मताधिकार के विरुद्ध दिए गए तर्क का आज के प्रजातंत्र के प्रवाह में कोई अस्तित्व नहीं है। उसके खंडन में निम्न तर्क दिए जा सकते हैं जो कि स्त्री मताधिकार के पक्ष में होंगे। पहला, मताधिकार के संबंध में लिंग भेद नितांत अनुचित है। लिंग भेद शारीरिक एवं आकस्मिक भेद है जिसे मताधिकार का आधार बनाना उचित नहीं कहा जा सकता। स्त्रियां भी आज कंधों से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ सारे क्षेत्रों में काम कर रही है, अतः यह कहना गलत होगा कि स्त्रियां पुरुषों के समान बुद्धिमान और शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं। मिल के अनुसार राजनीतिक अधिकारों के संबंध में स्त्री और पुरुष के भेद को उसी प्रकार अनुचित मानना है जिस प्रकार बालों के रंग को। सिजवी के अनुसार, मैं इसका कोई कारण नहीं देखता कि किसी आत्मनिर्भर वयस्क को जो अन्य सब प्रकार से योग्य है केवल लिंग के आधार पर मताधिकार से वंचित कर दिया जाए। दूसरा, स्त्रियों की दुर्बलता का कोई तर्क नहीं। स्त्रियों को पुरुषों से भी अधिक इस अधिकार की आवश्यकता है क्योंकि वो शारीरिक दृष्टि से निर्बल होने के कारण अपनी रक्षा के लिए कानून और समाज पर अधिक निर्भर होती है, अतः प्रतिनिधि निर्वाचित कर वे अपने हितों की रक्षा करने में समर्थ होंगी। तीसरा, पारिवारिक जीवन पर बुरा प्रभाव नहीं। स्त्री मताधिकार से पारिवारिक जीवन में अशांति उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि वो परिवार की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने के बजाय देश की सभी समस्याओं पर विचार करेगी तथा पारिवारिक जीवन के प्रमुख कर्तव्यों बच्चों का लालन पालन इत्यादि में वस्तुतः कोई विरोध नहीं है। चौथा, वर्तमान परिस्थितियों में नितांत आवश्यक। वर्तमान समय में स्त्री और पुरुष कार्य विभाजन की बात नितांत असत्य हो गई है। स्त्री एक मजदूर, क्लर्क, व्यवसायी, शिक्षक, अधिकारी या वकील या सैनिक के रूप में काम करती है। अतः स्त्रियों को जब संविधान ने पुरुष के समान ही आजीविका, संपत्ति और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने का अधिकार दिया है, तो मताधिकार से कैसे वंचित किया जा सकता है। पांचवा, राजनीति पर स्वस्थ प्रभाव। मताधिकार के परिणाम स्वरूप यदि स्त्रियां शासन कार्य के संचालन में भाग लेती हैं, तो क्योंकि स्त्रियां सामान्यतः शांति और व्यवस्था प्रिय होती हैं, इस प्रकार वो मानवीय गुण अधिक होने के कारण राजनीति में भाग लेने से समस्याओं को सही ढंग से निपटा सकेगी। अगर उनका मतदान परतंत्र हो तो भी कोई हानि नहीं है, क्योंकि मिल के शब्दों में बुरी सी बुरी बात यह हो सकती है कि स्त्रियां अपना मत न देकर प्राधीन मत देगी। व्यक्तियों के पैरों की जंजीर काट देना लाभदायक ही होता है, चाहे वे चलना न भी चाहे। यदि यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि अपनी पत्नी के साथ निर्वाचन के विषय पर अवश्य वार्तालाप करेगा और यह पति का मत न होकर संयुक्त मत होगा। निष्कर्ष, वास्तव में समय बीत चुका है जबकि स्त्री इस मताधिकार पर वाद विवाद किया जाता था। अब तो लगभग सभी देशों में स्त्रियों को मताधिकार मिल चुका है और शेष देशों में मिल जाएगा। समय के प्रवाह को अधिक देर तक रोका नहीं जा सकता है। स्त्रियों को मताधिकार से वंचित करना न तो तर्कसंगत है और न ही अनुभव के आधार पर इसे उचित कहा जा सकता है।